نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی بھوکوں سے بجھا دیں. یہ تو کچھ ان لوگوں کا ارادہ ہے جنہوں نے خود بھی اللہ کو نہیں پہچانا. ان کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ واللہ متم نورہ، اور اللہ تو پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو. اچھا، اللہ کا یہ پورا کرنا، یہ اتمام نور اللہ کرنے والا ہے، یہ لوگوں کو کیسا لگتا ہے؟ فرمایا: ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ بہت ہی ناپسند لگے یا مکروہ لگے غیر مسلمہ کو، کافروں کو، انکاری لوگوں کو. یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ اس نور کو پورا کرے گا، تو اس نور کو بجھانے والوں کو تو یہ بات کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے سارے ادیان پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند لگے. سورت صف کی آیت نمبر 8 اور 9. ہمارے ساتھ جن لوگوں نے ریسنٹلی سورت صف پڑھی ہے بنیان مرسوس میں، وہ تو یقیناً اس کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں اس کو ایک سٹریچ میں پڑھنا چاہوں گی. آپ ذرا سا سوچئے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور اس میں کس چیز کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں، میں ایک سٹریچ میں بڑھتی ہوں. یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اسے پورے کہ پورے دین پر غالب کر دے، اور خواہ یہ عمل مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. الحمدللہ، میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثریت قرآن پاک کے ساتھ بہت ہی محبت رکھتی ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں. علم کی محفلوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ آیت صرف سورت صف میں ہی نہیں ہے، تین جگہ ہے پورے قرآن میں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو، سورت صف، توبہ میں اور سورت فتح میں. تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کو سمجھنا آج ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ وہی ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنی ایک طویل پوئم، جس میں جواب شکوہ اور شکوہ کے کچھ باتیں ہیں، اس میں کس رنگ میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی مسلمان کو کوئی جاب ڈھونڈنے کی، مسلمان کو فارغ رہنے کی، اور اپنے آپ کو اس سوچ کے ساتھ رکھنے کی کہ میں کیا کروں، میں بور ہو رہا ہوں، میرے پاس کام نہیں کوئی نہیں. ہر مسلمان آن جاب ہے. پیدائشی مسلمان، جو ہر مسلمان ایک اللہ کے بندے کی حیثیت میں دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک کام دے کر بھیجتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ جاؤ توحید کا دیا جو جلایا جا چکا ہے، تم جا کر اس کو پورا کرو. حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جس چیز کے لیے پیدا کی گئی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا پہ اللہ کا نام لاگو ہو جائے. آج تحدیث نعمت پہ بول دیتی ہوں کہ ہمارے پاکستان ٹرپ، جو انشاءاللہ 21 کے بالکل آخری دنوں سے شروع ہو کے 22 تک چلے گا، اس کا آج پہلا لیکچر ہے. ہم نے اس سیریز کو ہر ٹرپ کی طرح ایک نام دیا ہے، مختلف ٹاپکس کے ساتھ وہ سیریز چلتی رہتی ہے، اور اس دفعہ پاکستان کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ زہر الفساد. अभी हमने चंद दिन पहले यूके से एक लेक्चर भी इसी मौजू पे किया है कि जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी। तो इंशाल्लाह हमारे सारे ही लेक्चर्स आज के लेक्चर की तरह इसी थीम पे होंगे कि ज़मीन पर फसाद फैल चुका है। हम जब लफ्ज़ फसाद की बात करते हैं तो हमारे दिन में गोलियां चलना, हड़तालें होना और बम फूटना, खुदकुश हमले आते हैं, ये सब बात की बातें हैं। आज के इस टॉपिक के साथ समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ा फसाद क्या है। नंबर एक, इंसानों में से कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह को नहीं मानते, जिसको आज हम एथियस्ट समझते हैं, पहले दौर में उनको दहरिये कहा जाता था, खुदा फरामोश। वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कौन खुदा, हमें तो ये बता हम खुद खुदा हैं, खुद से खुदा। नफ्स को पूछने वाले, मुआशरे को पूछने वाले, अल्लाह की बातों को पीछे डाल के जीने वाले आज अल्लाह को नहीं मानते। हालांकि अल्लाह को मानने से क्या नुकसान होता? ये ऐसी है जैसे कोई शख्स अपनी माँ को माँ ना माने, या अपने बाप के बारे में कि मैं इनको बाप नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि फिर अगर इनको बाप मान लिया तो फिर मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। लोगों को अल्लाह सुबहाना ताला के साथ जोड़ते हुए अगर आप देखें तो कोई मिसाल तो नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा एक इंसान अल्लाह सुबहाना ताला की मार्फत ले लेता है, उसको अल्लाह की बात मानना आसान लगता है। तो आज फसाद की सबसे बड़ी किस्म शिर्क, कुफर, एथियज़म है, जो आज के इस टॉपिक में है। देखिए चंद जुमलों में इसका थोड़ा सा हिसार कर लेते हैं। आप इस पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, कुछ चाइना में होंगे। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जो मुझे याद है वो ब्रुनाई था किसी दौर में, अब कोई और हो गया हो तो मुझे नहीं पता। क्या छोटे से छोटे मुल्क के बारे में भी आप ये गुमान कर सकते हैं कि उसका कोई कानून नहीं, उसका कोई लॉ नहीं? ये अलग बात है कि कोई माने ना माने उस बात को, लेकिन उस मुल्क पे किसी न किसी की हुक्मरानी होती है, सदर है, वजीर है। अक्सर आप देखिए कि सदर के साथ कायम मुकाम सदर का नाम होता है। ये कौन है जी? बचपन में हम पूछा करते थे अपने घर वालों से, तो उन्होंने बताया कि अगर खुदा ना खास्ता सदर को कुछ हो जाए तो फौरन दूसरा उसकी जगह पे आ जाए। इसी तरह से कभी क्या होता है कि कोई एक अगर चला जाता है कहीं बाहर के मुल्क में तो पीछे से दूसरा आ जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में सदर, वजीर और मशीर चलते जाते हैं। आपके घर में भी किसी एक की हुक्मरानी ज़रूर चलती है। बिल्कुल इसी तरह ये पूरी दुनिया, अगर आप इसको एक मुल्क समझें, तो इस मुल्क में जिसकी हुक्मरानी होनी चाहिए वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो अल्लाह सुबहाना ताला है। फसाद उस वक्त फैलता है जब घर वाले को घर से निकाल दिया जाए और उसकी जगह कब्ज़ा कर लिया जाए। अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप घर जाएं और आपकी जगह वहाँ कोई और आ चुकी हो और आपसे कह के भागो इधर से, मैंने ताले लगा दिए, मेरा घर है ये, मैं लूँगी, किसी की फैक्ट्री पर कोई कब्ज़ा कर ले, तुम्हें कैसा लगता है? बस इसी सारी चीज़ को सामने रखते हुए आप अपने जहन में ये चीज़ ले आइए कि दुनिया में असूलन जिसको आप कह सकते हैं कि बात दिल को लगती है, वो क्या है कि इस दुनिया में अल्लाह का निज़ाम चलना चाहिए। अल्लाह को बड़ा मानिए और उसकी मर्ज़ी मानिए, बस जो वो कहता है वो कर लीजिए, जो वो कहता है ना करें उससे रुक जाइए। अगर ये होता तो ये अमन था, और इसका अपोजिट फसाद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मुल्क के सदर को हटाकर कोई मार्शल लॉ लगा दे, कोई दूसरा हिजब इख्तलाफ वाला ऊपर उठता है और वो उसका कब्ज़ा उसकी जगह पे कर लेता है। क्या आज हम मुसलमान अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अगर हम जिस दुनिया में हैं तो क्या आपको अपने इर्द गिर्द की जगहों पे ये फसाद दिख रहा है? ये फसाद वो फसाद है कि जिसने आज हम सब की नस्लों के लिए अगले चंद सालों के बाद इतने बड़े बड़े चैलेंजेस पैदा कर देने हैं कि जिसकी आज बहुत सी पेल रिफ्लेक्शन ही सही, लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने दिखती है। पूरी दुनिया को देख लीजिए, आप मुसलमानों की बात ना कीजिए, ग्लोब पर नज़र डालिए। ये कोरोना वायरस के इस सानहे ने जो हमारे इर्द गिर्द से गुजरा, ये क्या है? और अगर आज हम देखें, आप दुनिया की कौमें हैं उनकी नज़रों से देखिए, आज तक किसी से ये मख्फी नहीं है कि आज भी दुनिया में इस्लाम कितनी बड़ी ताकत है। इस्लाम लाना, इस्लाम नाफिज करना, इस्लाम का निज़ाम में अदल मुकरर करना, इस्लाम के तरीक़ों पे मईशत करना, सियासत इस्लाम के लाने में कितनी बड़ी खैर है। यानी मैं फिर अपनी बात को दोहराती हूँ, आज ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि मुसलमानों के पास जो खूबसूरत दीन इस्लाम की सूरत में छुपा पड़ा है, उसको अगर हम उसकी उस असल शक्ल में पेश कर दें जो अल्लाह के नबी ने पेश की, और उसी तरह नाफिस कर दें जैसे मदीना में नाफिस हुआ, और हम उसी तरह इस्लाम का वो निज़ाम अदल कायम करें जो दौरे फारूकी में था, और अगर हम इस्लाम का निज़ाम मईशत यानी इकोनॉमिकल सेटअप वो कर दें जो हकीकत में खुलफाए राशिदीन के दौर में था, तो दुनिया में कितनी खैर आएगी इससे आज हम खुद भी नहीं आगा। हकीकत ये है, ये बिल्कुल ऐसे है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया के थ्रू बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों से आगाह हो गए जो पहले नहीं जानते थे। हर बंदा ही हेल्दी खाने खाने और इन चीज़ों पे आ गया क्योंकि ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया। हम मुसलमानों को खुद भी नहीं पता कि इस्लाम क्या था। अल्लामा इकबाल ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं कि अभी महफिले हस्ती को है ज़रूरत तेरी, यानी मुसलमान को मुखातिब करते हैं। ये वही पोएम है जिसका पहला मिसरा अगर आपने कभी अपने उर्दू के सब्जेक्ट में कभी इकबालियात पढ़ा हो तो कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज रखती है। कहते हैं कि जो बात दिल से निकलती है ना वो दूसरों के दिलों में जाती है। और कल भी हम अपनी एक क्लास में नबी सल्लम का तरीक़ा तबलीग पढ़ रहे थे, तो वो किताबों से पढ़ने वाला नहीं था, वो कोट नहीं करते थे आकर के ये कर लें, वो दिल से बात करते थे और मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीके से बात करते थे। बिल्कुल इसी तरह से उसी पोइम के अंदर अल्लामा इकबाल ये बात बता गए, और वो क्या है कि मुसलमान ज़रा अपनी फिक्र कर, तुझे हो क्या गया, अभी महफिले हस्ती को है ज़रूरत तेरी, यानी अभी इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। ओ मुसलमान और सारे मुसलमानों, तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो, सिर्फ अपने लिए ज़िंदा मत रहो, इंसानियत को तुम्हारी ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए ज़िंदा ना रहो कि बीए कर लो, मास्टर्स कर लो, नौकरी मिल गई, पेंशन मिली और मर गए, और आज की दुनिया में ये कह लें कि बच्चे पैदा कर लो, फिर उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, और उसके बाद फिर बड़े होने पे उनकी धूमधाम से शादियां करो, और फिर उनके बच्चों के बच्चों की फिक्रें करते जाओ। नहीं, अभी महफिले हस्ती को है तेरी ज़रूरत, या ज़रूरत तेरी। लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है इतना काम करने की, क्या ज़रूरत है इन बातों की। कोई बात नहीं ना, आराम तो है ना, ज़रा रेस्ट तो हो जाए, ज़रा थोड़ी सी ये तो हो जाए, और आज तो अपने घर में काम है और आज तो ये है। तो जवाब है कि अभी महफिले हस्ती को है ज़रूरत तेरी। जिस दिन उम्मत के एक एक फ़र्द ने ये जान लिया उस दिन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आप तो बड़े सिक्योर माहौल में, जो लोग मुसलमान मुल्कों में रहते हैं वो कभी भी उस आने वाले तूफ़ान के पेश खैमे नहीं कर सकते उसका अंदाज़ा जो मग़रिब की दुनिया में सर पे पड़े हुए ख़तरों की सूरत में दिख रहा है। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ में हम एक एक करके एक एक फसाद की सूरत को देखते रहेंगे। हम सो ही नहीं सकते, कोई सांप के मुंह में या सांप के बिल में हाथ देकर सो सकता है? जिस तरीके से आज हमारे बच्चों को इस्लाम से दूर किया जा रहा है, ये जो मेरा आज मौजू है नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, माजरत के साथ इतमाम तो अभी गैरों तक पहुंचाना था, हमारे तो अपने बच्चे बैक ट्रैक होने लगे। अभी रिसेंटली अल्लाह ने पिछले 3 माह चली जाऊँ तो अमेरिका से लेकर यूके के आलमोस्ट 5-6 मुल्कों में यही बात कही और सुनी है कि इस वक्त हमारे मुसलमान बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये इतमाम कहाँ से होना है? तमाम होता है ना लफ्ज़ मुकम्मल, कम्प्लीशन। अल्लामा इकबाल ने जब ये बात कही थी तो उस वक़्त उनका मतलब इससे क्या था कि अभी दुनिया में गैर मुस्लिमों तक इस्लाम पहुँचाना है, आज तो मुसलमानों की नस्लों का ईमान बचाना है। मैंने 3-4 फर्स्ट हैंड चीज़ें ये पिछली सीरीज़ में शेयर की हैं, साथियों ने बताई हैं, जो खुद वो बच्चे जो साइंस में आगे बढ़ जाते हैं, यानी आप देखते हैं फिजिक्स और जियोलॉजी, वो कहते हैं ना सितारों पे कमंदे डालना, यानी ये फिगर एंड फैक्ट्स के साथ ये बात अब सामने आ चुकी है अमेरिका में कि जो हमारे मुस्लिम बच्चे साइंस में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। देखिए ये कोई जज्बाती बात मैं आपसे नहीं करनी है, ना मुझे महफिल को गर्माने का कोई शौक है, ना मुझे आता है करना ऐसा, ये सच है। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं अब पिछले ट्रिप से लेके अभी के कह लूँ या इर्द गिर्द जहाँ भी, इसमें किसी एक मुल्क का भी ना नाम सोचिएगा, ये आपके इस मुल्क में भी है लेकिन यहाँ छुपा हुआ है, डोरमेंट है, अभी वो हाइबरनेट किया हुआ है। एक वक्त आ रहा है कि अब हमारे बच्चे मुंह खोल के कह रहे हैं वी आर नॉट मुस्लिम। बिलीव मी, आप आप आज से 20 साल पीछे जाएं, मैं अपने आप को सोचती हूँ ना कि जब हम नए नए जवान हुए या जब हम सोचते थे कि जवानी में किसी का बच्चा बिगड़ा तो जहन में भला क्या आता था, किसी लड़की के पीछे लग गया, पान खाने लग गया, दोस्तों में जाकर सिगरेट का सूटा मार दिया। सच बताएं, रिश्ते नाते करते कराते क्या हमारे जहनों में यही नहीं आता था बिगड़ा हुआ बच्चा? आज तो ये नहीं है, ये तो आम बात है। माएँ खुद कहती हैं एक ही लड़की के साथ फिरना जिसे शादी करनी है, वो कहती है मेरा बेटा बड़ा नेक है, वो मुसलमान लड़की के साथ फिरता है। आज इस फसाद की बात की ज़रूरत नहीं है, आज तो सिर्फ शिर्क की बातें करनी है आपसे। लेकिन ये आप इस पूरी सीरीज़ में सुनेंगे कि आज इस दुनिया को मुसलमानों ने काम ना करके अपने रेस्टिंग मोड में आकर, स्लीप मोड में आकर, वेडिंग मोड में आकर, सेलिब्रेशन मोड में आकर और खूब से खूब तरक्की तलाश के मोड में, अलहाकुमुत तकासुर के मोड पे और हल मिम मजीद के मोड में आकर आज के मुसलमान ने जो काम छोड़ा, तो क्या इस शहर की बल्दिया में कुछ लोग जो सफाई पे मामूर हैं वो अगर 4 दिन सफाई ना करें तो लाहौर शहर की गलियों का क्या हाल हो? सब उसका अंदाज़ा करके भी घबराएंगे। हो सकता है कि कूड़े के ढेरों में से ताफुन की बू आए। बस सफाई वाली कंपनी अगर सफाई छोड़ दे तो जितनी गंदगी मचेगी उससे भी ज़्यादा गंदगी इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का दावत इल्लाह का काम छोड़ने से फैली हुई है, और पूरी दुनिया इस वक्त बिल्कुल एक एक लाइन पर खड़ी हो गई है। अब कोई किसी को ये कहे ना कि मॉडर्न है फुला, मॉडर्निज्म आज वो छोटे कपड़े पहनना नहीं रहा, टांगे नंगी तो हमने भी आधी आधी करके दिखा दी, चुस्त पजामे तो हमने भी गोरों को दिखा दिए। आज के दौर में किसी का मॉडर्न होना, आपको पता है उसका स्लोगन क्या है? आई एम एथियस्ट। और उससे भी नया बच्चा जो किसी इसी सीरीज में एक दिन हम करेंगे, आई एम गे। अपना नाम ऐसे बताते हैं जैसे गे बाप का नाम है जिसको लास्ट नेम कहते हैं, यानी वो ऐसे तारुफ कराते हैं। मैंने देखा एक आध ऐसा मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, एक लड़की है और शो हो रहा है स्टेज पे और जो उसके साथ जो भी होते हैं आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेज यानी जो इनके शो करवाते हैं ना, इंटरव्यू कर रहे हैं कोई, तो वो एक लड़की सी बैठी है और दूसरी उससे इंटरव्यू ले रही है या उससे कुछ उसकी चीज़ें पूछ रही है, तो ये अपना तारुफ कराती है आई एम लेस्बियन। फिर मैं समझी उसका नाम होगा, पहली दफ़ा में तो समझ भी नहीं आता लफ्ज़, फिर उसने बाद में बताया। तो मैंने सोचा ये कोई फ़ख्र की बात है, कभी कोई ये बताता है? आप देखिए कि दुनिया में गंदगी तो फैली, फसाद तो फैला, ये कूड़े के ढेर नज़र आते हैं, ये कचरा नज़र आता है, ये नालों का गंदा पानी दिखता है। कभी आपने ये भी सुना था कि बड़ी बड़ी स्टेजेस पे और मशीनों के सामने बैठकर लोग अपनी गंदगी और अपनी इंतहाई पर्सनल चीज़ें खोलें? क्या ये कोई एक खुफिया एजेंडा नहीं है? तो वो कहाँ से आ गया, ये होमोसेक्सुअलिटी कहाँ से आ गई, ये गेइज़्म कहाँ से आ गया, ये तौहीद के इतमाम के ना होने से आ गया? तौहीद वो पौधा है जिससे खैर के फल आते हैं, और जब ये पौधा उखेड़ दिया जाता है ना तो ये जितने दुनिया में आज जुर्म है, दो तीन जो मैंने बोल दिए, आज आपको जिनसी बेराहरवी दिख रही है, आज आपको सियासी बेराहरवी दिखती है, इकोनॉमिकल डिसऑर्डर देख लीजिए, ये सूद के नाजायज़ बच्चे, ये सारे नाजायज़ बच्चे हैं शिर्क के और कुफर के, और हम आराम से बैठे हैं। शाम को जाके खाना भी पकाना है, फिर मीठा भी बनाना है, सैलड भी दो तीन किस्म का, और आज तो घर में दावत है। क्या हमारी ये रूटीन नहीं हो गई? सुबह का वक्त हम सो के गुजार देते हैं, सूरज भी जाग जाग के बेचारा जाने के करीब होता है तो फिर हमारी आँख खुलती है। क्यों क्यों अभी हम इतने आराम तलब हैं? तो अल्लामा इकबाल का वो जुमला जहन में रखिए, अभी महफिले हस्ती को है ज़रूरत तेरी। ये मेरा आज पहला पैगाम है आज के मुसलमान को। हो सकता है आपको ये मेरी बातें अच्छी भी ना लगें, ये क्या करने वाली बात है, कोई नमाज की फजीलतें बताएं, कोई ज़रा सजदा सहव का तरीका बताएं, जो दीन में आया भी वो इन्हीं चीज़ों में उलझ गया और अच्छी खासी दीन की खूबसूरत इमारों को 4 टुकड़ों में बांट दिया। आज हमारा दीन सिर्फ इसी पर रुक गया, हिफ्स करना है, हिफ्स कराना है, हिफ्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दीनदार कहते हैं, आम लोग तो अब ये भी नहीं कहते होंगे। कैसे चैन पड़ता है? आप देखिए कि मैं आपको इस मौजू की शिद्दत को समझाना चाहूँ ना, माँ एक ही है ना, बाप भी एक है, कोई हमारे बाप को बदल कर किसी और को लाना चाहे या हमारी माँ को हटा कर कोई दूसरी औरत लाना चाहे तो आराम से बैठे रहेंगे, कोई ऐसा खानदान का शख्स, कोई ऐसी झगड़े वाली बात, हमें चैन आएगा? तो ये जो शिर्क हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपके रब को बदला जा रहा है ना, और शराकत लाई जा रही है। क्या ये सब सुनकर भी हम बैठे हैं? तो पहला जुमला आज आपने याद करके जाना है, अभी महफिले हस्ती को है ज़रूरत तेरी। दूसरा जुमला लीजिए, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी। ये अलामा इकबाल का दूसरा जुमला देने लगी आपको। कहते हैं कि अगर दुनिया या ज़माने में कोई खैर बाकी है तो उम्मते मुस्लिमा की वजह से है। इस कुरान, सुन्नत और शरीयत की वजह से है जो इस उम्मत के पास है। अल्लाह ताला ने इसको बता दिया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतन लितकून शुहदा अलन्नास। तुम अपने लिए इस दुनिया में नहीं आए, कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। देखिए, अल्लाह ना करे किसी के शौहर का इंतकाल हो, और वो भी सूरत में हो जब बच्चे भी हों, तो वो औरत जब रोती धोती है तो अमूमन घर वाले उसको क्या कहते हैं? सब्र करो, अब तुमने इन बच्चों के लिए जीना है, ऐसे कहते हैं ना। अब तुम रोगी धोगी तो इन बच्चों को कौन पालेगा? अब उस औरत में और वो उससे शौहर के जिंदगी वाली औरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो लाडली सी, नाजुक सी, नखरे करने देखने दिखाने वाली लड़की एक आयरन वूमेन बन जाती है। वो अपने बच्चों को पालती है, फिर वो अपने माशरे में पनपने के लिए कोशिशें करती है। तो एक बंदा जो बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में रह रहा होता है ना, उसमें और एक हालात के थपेड़े खाए हुए सब शख्स में बहुत फ़र्क होता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी। ऐ मुसलमान, इस दुनिया में अगर कोई खैर है ना, आज के दौर में 2021 है, आज 11 दिसंबर 2021, पूरे 20 दिन के बाद डेट बदल जाएगी और हम 22 में आ जाएंगे। आज भी इस पूरी दुनिया को इस पैगाम की ज़रूरत है जो हम मुसलमानों को डे वन पे मिल जाता है। एक कान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, और हम उसी की बहसों में पढ़ते हैं। कौन दे सकता है? औरत दे सकती है जान के? नहीं, मर्द देगा? नहीं। अच्छा, फिर वो दाएं में देंगे, दोनों बाएं में देंगे? हम इन्हीं चीज़ों में उलझ गए। हालांकि अल्लाह ने जो वादा अलस्त का पैगाम दिया, बल्कि अगर आप चाहें इस मौजू को का शुरू सुनना, तो अभी यूके ट्रिप में जो बर्मिंघम में एक पहला ही लेक्चर था हमारा सुबह के वक्त में, वो यही था कि कैसे दुनिया को आज हमने फसाद का शिकार बना दिया। तो वहाँ से आप कुछ नोट्स ले सकते हैं, लेकिन इतनी बात को सुनकर आगे चलिए, आप काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। कल परसों से मैं 2 ही दिनों में आए हुए, परसों हम आए तो कल के तो एक दिन गुजरा, तो इधर मासियाँ उधर लड़कियाँ, बाजी को काम बताएं, अच्छा मैं ये कर दूँ, और मैं घर वालों को भी देखती हूँ, सिर्फ यही कहना पड़ता है, मासियों को ये कर लो, दूसरी को ये कर लो, उसमें ही हम थक जाते हैं। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा आपको पता है मैं जहाँ से आई हूँ, ये कप जो है ना, ये इधर पड़ा है ना, ये मैं अभी उठा कर किचन में रख दूँ, और अगर मैं इसको ना रखूँ एक हफ्ते बाद भी मैं नहीं रखना है। नहीं समझे? आपने ही सफाई करनी है अपने घर की, टॉयलेट आज साफ कर लें आप अपने। वो कहते हैं ना, बाहर रानियाँ तो घर में नुकरानियाँ, ये हम बाहर वालों कहलाते हैं, और सब करते हैं। किसी को टॉयलेट साफ करने में कोई शर्म नहीं आती, वैक्यूम क्लीनर पकड़ने में मर्दों को कोई शर्म नहीं आती, मस्जिदों में करते ही मर्द हैं, खुशी से करते हैं। सिस्टर्स आती हैं, वो फ़ौरन पकड़ती हैं और काम करती हैं। ये हम जैसे आज आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, माशाल्लाह इतने लोग जो आप आए हुए हैं, तो इस तरह का अगर इवेंट कहीं बाहर की जगहों में होता है, उसके बाद सब लग जाते हैं, आने वाले भी, जाने वाले भी, कार अगर अगर कोई खाना पानी है वो भी वही लाते हैं मिल के, और एंड पे ऐसे साफ सुथरी मजे छोड़ के जाते हैं। कोई मासियों का तसव्वुर नहीं है, कुछ मुल्कों में है भी, लेकिन कम अज़ कम इधर यूरोप में बहुत कम है। आपको पता है ये काम आपने करना है, रात को खाना बनाना है, अल्लाह खैर से लाए घर में मर्दों को भी बच्चों को भी, आप ही पकाएंगी तो वो खाएंगे। आप दाल चावल पका लें, आप गोभी बना लें, आप भिंडी बना लें, करेले बना लें, जो दिल करता है, आप नहीं बनाना है तो पकेगा। तो फिर जब यही कैफियत हो तो ज़रा सा सर दुखे तो सो जाते हैं, खांसी आ गई, बुखार हो गया, आप कहते हैं हिम्मत कर उठ अपना नाम लेके, आप कहते हैं उठ अल्लाह की बंदी चूल्हा खोल, क्योंकि पकाऊंगी तो मैं ही पकाऊंगी। और अगर किसी घर में माशाल्लाह अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक से दो हैं, तो लोग बांट के कर लेते हैं, चलो आप आराम करें मैं ही बना लेती हूँ, ऐसे ही होता है ना। ये जो काम है ना, ये सिर्फ उस दिन होगा जिस दिन उम्मत का हर फर्जे कहेगा करना है तो मैंने ही करना है, और अगर मैंने नहीं किया तो ये नहीं होगा। और आप माशाल्लाह जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं इस वक्त, और एवरेज लगा लूँ हर एक के 4 बच्चे, ऐसे ही होते हैं ना, हुकूमत ने जितने मर्जी नारे लगाए दो बच्चे खुशहाल कराना, पर पाकिस्तानियों ने नहीं माना। कम से कम चार तो अच्छे लगते हैं, भाई की बहन, बहन की बहन और भाई का भाई, और चार बच्चों का बड़ा मज़ा आता है। हम खुद भी छोटे थे ना, हम कहते थे दो बहनें दो भाई, बहन की बहन भाई का भाई, है ना। अब चार बच्चे आपके आपके साथ हैं, ये पैगाम जो आज आपको इधर मिले, आप सिर्फ इन चार बच्चों के साथ, और बच्चों के बाप खुद ही सुन लेंगे बेचारे साथ, इतने घरों में ये बात चली जाए, आज से खुद को कहिए कि ये काम करना है तो मैंने ही करना है, और अगर मैंने ना किया तो नहीं होगा। शुरू में आप अकेली करेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे, आपके शौहर और आपके बाकी लोग आपके साथी बनते जाएंगे। यकीन कीजिए कि ऐसे दुनिया साफ हो जाएगी, आप इस दुनिया का नक्शा बदला हुआ देखेंगे। कोशिश करेंगे। अब वो करना क्या है, कैसे करना है, जब बंदा नियत कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी आसान कर देता है। तो हमारे लिए इसमें क्या बात समझ आती है, इस बात को देखकर कि ये मैंने ही करना है। आगे चलिए, दूसरी बात है कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो फिर नुकसान किसको होगा। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप देखिएगा हमारी लोरियां बदल जाएंगी। माजी के दौर में देख लीजिए, माएँ बच्चों को दूध पिलाती थी। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की कि हमारे असलाफ की माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी ताकि जाग जाएं, खड़े हो जाओ। कहती थी तुमने उम्मते मोहम्मदिया का एक फ़र्द बनना है, तुमने बहुत अच्छे काम करने हैं, तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारियां बड़ी हैं, खा पी के बड़े हो। यानी वही बात है, पंजीरी भी अगर माँ बना के खिलाती होगी तो उसके अंदर भी यही सोच थी कि इसने दीन के काम करने हैं। कल की माँ बच्चे को दूध पिलाती थी कि जागो, और आज की माँ बच्चे को दूध पिलाती है कि सो जाए। हमने भी जब बच्चे को सुलाना होता है तो क्या कहते हैं, इसको फीडर दो, ये रो रहा है, ये फर्क है। इसलिए आज की उम्र सो गई। आज की माँ अपने बच्चे को खिला रही है, पिला रही है, वो मैकडोनल्ड का बर्गर खिला दे, वो KFC से खिला दे कुछ, या वो कुछ भी घर का पका दे, सिर्फ ये है कि ये बच्चा मेरा बेहतरीन तरीके से पल जाए, तो फर्क है। इसीलिए फिर कल उम्मत जाग रही थी, आज उम्मत सो रही है। तो ये पूरी सीरीज जो है ना, ये वेकअप कॉल है। वेकअप मुस्लिम, जागो मुस्लिम, जागो और जगाओ। फिर आगे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कौकब किस्मते इमकान है खिलाफत तेरी। मसला ये कि हमें तो उर्दू भी नहीं समझ आती, इंग्लिश किधर आनी है, और इंग्लिश पढ़ने बोलने वालों को हमारी उर्दू कहाँ समझ आए, हमें खुद नहीं आती। क्या मतलब है इस मिसरे का? कहते हैं कि अभी तो तुम्हें सारे जहानों पर हुकूमत करनी है, तुम इस दुनिया में खलीफा बनाकर भेजे गए हो, अपने मुकाम को पहचानो। समझो अल्लाह ने क्या कहा था फरिश्तों के सामने, इस वाइस काला रब्बु कलिल मलाइकती इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। कहाँ तुम आराम से बैठे हो, अभी तो करने वाला बहुत सा काम बाकी है। उम्मत को देखो, दुनिया को देखो, उम्मत तकलीफ में है और इंसानियत तबाही के किनारे पर है। और एक जुमला दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, और तुम इस जमीन पर अल्लाह का आखिरी पैगाम हो। इस उम्मत की ये शान है, तुम अल्लाह की आखिरी उम्मीद हो, तुम आखिरी पैगाम हो। आदम से लेकर नूह से होते हुए ये सिलसिला मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपसे ही सहाबा ने सवाल कर लिया था कि आपके बाद वालों को पैगाम कौन देगा, तो आपने कहा मेरी उम्मत, मेरी उम्मत के उलमा वारिस हैं। यानी मेरे वारिस कौन है, उम्मत के उलमा। आज का आलिम किधर है? आज तबलीग भी होगी और बहुत कुछ होगा, लेकिन अमूमी तौर पर देखिए किस माँ ने अपने बच्चे को ये लोरी दी कि तुम इस ज़मीन पर अल्लाह का आखिरी पैगाम हो। देखिए हर उम्मत जो थी ना, वो उम्मत मदऊ थी, नबी ने उनको दावत दी, जिन्होंने कबूल कर लिया वो मुसलमान ठहराए और दूसरे दूसरी तरफ चले गए। हम मुसलमान जो उम्मत मोहम्मदिया से हैं, हम उम्मत मदऊ भी हैं और उम्मत दावा भी हैं, हम पे दोहरी जिम्मेदारी है। हमने पहले आमन्ना कहा, आखिरी रुकू पढ़ते होंगे आप तहज्जुद में, इन्ना ना समे ना मुनादियन युनादिलिल ईमानियन आमिनू बि रब्बिकुम फामन्ना, कि अल्लाह एक सुनाने वाले ने हमें सुनाया और हम उसकी बात मान गए, लेकिन हम आगे से दावत देना भूल गए। तो जिसको शिर्क की बू आएगी, जो शिर्क को बुरा समझेगा, उसको ये बात समझ आएगी। और ये जो जुमला है ना कि नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अभी तो हमने दुनिया को बताना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी जब एक इलाके को फतह करने निकले, तो उन्होंने जाके कहा कि तुम्हारा पैगाम क्या है, तुम चाहते क्या हो। कहा कि बंदों की गुलामी से निकाल कर लोगों को रब का गुलाम बनाना। और हम सब दिन में इयाका नाबुदु इयाका नस्तईन में इसका इकरार करते हैं। तो इस वक्त किसकी गुलामी है? बड़े बड़े सिस्टम्स, बड़ी बड़ी ताकतें, कुव्वतें, और पूरी दुनिया को आप देखिए कि वो आपको झुकाना चाह रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत साबित करनी है। हर फ्राइडे को मैं क्लास में पैगंबर इनकलाब करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई मुझे नबी रहमत दिख रहे हैं। क्या थोड़े से वक्त में अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम लिया। और जिसको आप कहते हैं कि खिलाफत अला मनहज नबूवा या खिलाफत अला मिनहाज नबूवा कायम करना है, अल्लाह के नबी के बाद अबू बकर से लेकर रज़ी अल्लाह अन्हो आगे के दौर के जो खुलफा का तरीका कार था वही लागू करना है, और पूरी दुनिया में हमने तौहीद का नूर आम करना है। अब ये तो ख्वाहिशें हैं। आप कहेंगे आप इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, हमें तो हमारी तो भी नमाज भी ठीक नहीं। और इट्स ट्रू, अभी तो हमारे मखारिज ठीक नहीं, अभी तो हम तजवीद सीख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक बहुत एडवांस दर्जे का है। वो लोग जिन्होंने अभी कुरान की वो रूह ही नहीं ली, जिनको अभी तक हकीकत में अलिफ बात आसा ही सही नहीं कहनी आई, उन्होंने पूरे कुरान का भी तर्जमा ही नहीं पढ़ा, और उन्होंने अभी तक हदीस में से शायद ही बुखारी के कुछ चीदा चीदा टॉपिक सुने हो, उनको ये बात नहीं समझ आएगी। सीधी सी बात है, मैं माजरत करती हूँ। आपके सामने मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया कि मेरे गुमान में आप सब किसी न किसी तरह से कुरान दोस्त हैं, इल्म दोस्त हैं, और आप तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इधर नुमाइंदे हैं आप सारे। जब कोई स्टूडेंट सबीलुल जन्ना को साइन अप करता है और पहले ही दिन, दूसरे तीसरे दिन, तो मैं अंदर से मुस्कुरा रही होती हूँ। बल्कि जब ऑन साइट पे कभी ऐसा होता है तो मैं फॉर्म्स उनके देख के सोचती हूँ, अल्लाह इनको नहीं पता कि इन्होंने किस कागज़ पे साइन कर दिया है। निकाह नामे पे साइन करके उतनी बड़ी चेंज ना आए ज़िंदगी में जो कुरान नामे पे साइन करके आती है। आज तक हमारे गम क्यों नहीं दूर हुए आपको पता? आज तक हमारे बच्चों के मसले ख़त्म क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमने कुरान का गम नहीं लगाया। हमें तर्जमा याद रख करना मुश्किल लगता है, हम छोड़ देते हैं। हमारे मुखारे सही नहीं हो रहे, नहीं नहीं छोड़ दो। जो बंदा दुनिया में पढ़कर या आप कह लें कि दीन के गम छोड़ देता है ना, अल्लाह उसको फिर औलाद के, माल के, घर के गमों में डालता है। और ये बात मैंने 2-3 दफ़ा कही है पिछले महीने में कि हमारी तकदीर में गम खाना भी अल्लाह ने लिखा हुआ है। जैसे हमारे रोटी के टुकड़े लिखे हुए हैं ना, माँ के पेट में भी 4थे महीने में बच्चा होता है तो आके रिस्क सारा लिख जाता है फरिश्ता। ऐवें घबराते रहते हैं आप लोग, कोरोना आ गया, आप जॉब में चली गई, ये होगा, आपका रिस्क लिखा हुआ है। दुनिया में आते ही बच्चा अपनी एक्सपिरेशन डेट लेकर आता है कि मैंने फौत कब होना है, कितना खाना है। जिस तरह हमारा रिस्क मुकर्रर है ना, इसी तरह हमारा गम, खुशी, मुस्कुराहटें, स्माइल, एक एक चीज़ लिखी हुई है। हम इस वक्त दर्द की बात करते हैं, गम खाना। अल्लाह ने आपके नसीब में ऐसे ही हम सोच लेते हैं किलो को, 1 किलो गम लिखा था। क्या आपने पूरी ज़िंदगी में 1 किलो गम खाना है? अब क्या हुआ? ज़रा सोचिए, बड़ी बारीक बात है इसके आगे। अब आपने ये गम लगा लिया कि हो लोग दीन पे क्यों नहीं, फल अल्लाह का बाख़ नफ्स कला सारी मिल्लम यू मिनो बिहाजल हदीस या सफ़ा। अब होगा क्या? ज़रा सा समझिए, आपने दीन से मुतल्लिक कोई गम लगाया, जैसे इब्तदाई दर्जे में तो यही होता है ना कि तर्जमा याद करना है, असाइनमेंट करना है, ग्रुपिंग करनी है, और सबसे बड़ी बात है वक्त पे क्लास में जाना है और निकलना है, ये गम है ना। आप ये गम खाते जाएं, होते होते यही गम आपको आज के इस टॉपिक पे ले आएगा कि आप दूसरों की हिदायत, पहले अपनी हिदायत की फिक्र लगती है, फिर जब अपनी हिदायत बढ़ती है ना तो फिर दूसरों की हिदायत की फिक्र लगती है। अब आप समझें कि 1 किलो में से आधा किलो गम आपने ये कर लिया, आपका हर वक्त गम ही है। तर्जमा, तजवीद, क्लासेस, ग्रुपिंग, मैंने साथ साथ रहना है, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, मेरी क्लास ना मिस हो, और होते होते ये गम बढ़ता जाएगा ना। तो वो जो आपके नसीब में 1 किलो गम था ना, उसमें से -50 यानी आधा किलो माइनस कर देगा अल्लाह। फिर आपको बच्चों के गम नहीं लगेंगे, आपको दुख नहीं लगेंगे, और कभी आएंगे भी ना तो आपको महसूस ही नहीं होता है। हमारे पास सैकड़ों गवाहियाँ मौजूद हैं सबीलुल जन्ना स्टूडेंट्स की, पिछले 5-4 साल के बीच की ले लें अगर। वो कहते हैं अगर कुरान से ना जुड़े होते तो टूट जाते, हाय अगर मैं कुरान ना पढ़ी होती तो मेरी ज़िंदगी में जो इतना बड़ा सानहा आया, हाय मैं तो ना करती। और याद रखिए, हम सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं। आज कोई बड़े आराम से बैठे हैं आप, घर से कोई फूलों का गुलदस्ता उठा कर लाए, हो सकता है कई घर में मसले छोड़ कर आए होंगे आप, लेकिन आपको गम महसूस नहीं होता क्योंकि नूरे तौहीद का इतमाम बाकी है। ये गम लग गया, जो किसी के बच्चे का गम खा लेता है ना, उसके बच्चे का गम अल्लाह उसको नहीं देता, वो अपनी क्वांटिटी पूरी कर चुका है। तो ये गम लगाइए,